ये लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये लाइट आंखों में आ रही है। हाय कृष्णा, हाय कृष्णा। ये सामने का लाइट सीधा आंखों में आ रहा है। मिलेगा कर तो ऊपर आएंगे। Why did they decorate the stage like this? Why did they decorate the stage? Hare Krishna! Sab bhaktan ka hardik swagat. बच्चों को कोई कंट्रोल में रखेगा? Jai Radha Madhava Jabihari Gopi Jana Vallabha Jivaradha Gopi jana vala bhaan Vivana dhaan Jai Radha Madhava Tujha Bihari Yashodanandana Brajaja Ranjana Yashodanandana Brajaja Ranjana Jamna Tira Vanachari Jamna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jabihari Jai Gopi Jana Vallabha Jivaradhari भी जाना वाला भाई
Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा। आपको सुनाई दे रहा है पीछे? हरे कृष्णा। आज हम लोग मना रहे हैं प्रभुपाद बुक मैराथन के पहला दिन। जैसे इधर आप स्टेज में देख रहे हैं, हमारे कुछ भक्तों ने, दारुक प्रभु और बाकी भक्तों ने इतना सुंदर तरीके से स्टेज को सजाया है। इधर नीचे देख रहे हैं संसार दावानल, इस भौतिक दुनिया के विविध अवगुण, वो आग के आग जब लपेटता है इसे क्या है, उसके ऊपर आप भूमि को देखते हो जिधर प्रभुपाद जी के विविध किताबें हैं और प्रभुपाद जी बैठे हैं इधर एक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जैसे हैं और ऊपर गोलक वृंदावन से दिव्य ज्ञान नीचे उतर रहा है और प्रभुपाद जी दुनिया में अपनी किताबों के द्वारा सब दुनिया के दुखित दुख से पीड़ित जीवराशियों को किताब के रूप में वितरण कर रहे हैं और साइड में देखिए प्रभुपाद जी के बड़े बड़े किताबें हैं। परम पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी खास करके इस मैराथन के शुभारंभ में आकर हम सब भक्तों को प्रेरणा देने के लिए आए हैं। महाराज जी 1968 में महाराज दो मिनट के लिए महाराज टू मिनट महाराज महाराज जी 1968 में जब मॉन्ट्रियल में पढ़ रहे थे कनाडा में प्रभुपाद जी के साथ मुलाकात हुई उनकी, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि उस जमाने में अनेक पाश्चात्य देश के लोग जुड़ते थे इस कान में, लेकिन भारतीय एक युवक अमेरिका में कनाडा में पढ़ने वाला जुड़ा है, तो प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर खास ध्यान दिया और बाद में प्रभुपाद जी ने महाराज को आदेश दी कि तुम भारत में जाकर भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी बनो और किताब मेरी किताबों को विविध भाषाओं में छाप कर उनको प्रचुर मात्रा में वितरण करो, ये आदेश दी थी प्रभुपाद जी ने उनको। तो उस आदेश को लेकर महाराज जी उन दिनों से अनेक 40-50 भाषाओं में किताबों को छाप कर सारी दुनिया में वितरण करते आए हैं। तो महाराज जी बीबीटी के बहुत सालों के पहले से ट्रस्टी हैं और मैंने देखा है पिछले सालों में भी एक बार चाइनीज भगवद गीता लेके आए थे महाराज जी, एकदम बड़े मोटे आकर महाराज ने दिखाया है सबको कि चाइनीज भाषा में भी निकल गया भगवद गीता। और एक बार हमने देखा नरेंद्र मोदी जी को महाराज ने एक बहुत बड़ा मोटा भगवद गीता दिया, आपने देखा होगा। तो इस तरह परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज के अनेक योगदान है, दिल्ली में ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट बनाकर महाभारत रामायण भागवत के ऊपर अनेक एग्जीबिशन है उधर, लेकिन दिल्ली के 14 मंदिर जो महाराज ने बनाए हैं उससे भी बढ़कर इनका बड़ा योगदान है सारे दुनिया में दिव्य ग्रंथों को फैलाने का कार्य। तो परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज जी प्रभुपाद जी के प्रिय अति प्रिय वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज जी पुणे के जीबीसी हैं जिनकी प्रेरणा से ये सुंदर अद्भुत मंदिर जो न्यू वेदिक कल्चरल सेंटर पूरा हुआ और भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इधर आकर इसके उद्घाटन की, अभी लाखों लोग इधर आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो महाराज जी की मार्गदर्शन, महाराज के आशीर्वाद, महाराज की देखरेख हम सब भक्तों के इस कम्युनिटी के भक्तों के लिए बहुत सालों से 25-30 सालों से ज्यादा है। तो इस बार हमने महाराज जी को ये मैराथन के शुरुआत में बुलाया है क्योंकि ये महाराज जी का 75वां साल है। दिल्ली में बहुत धूमधाम से इनकी व्यास पूजा मनाया गया, हम लोग गए थे। तो सारे महाराज के जिस प्रोजेक्ट में महाराज जी जीबीसी हैं वो सब प्रोजेक्ट के लोग अभी जग गए हैं, उनको मालूम है कि महाराज का 75वां साल है, इसलिए हम लोग बहुत बड़े मात्रा में वितरण करना चाहिए ग्रंथ। तो दिल्ली में मैंने सुना कि 7.5 लाख किताब वितरण करने वाले हैं एनसीआर के सब भक्त। तो हमने तो उसको सुनकर डर गए, हम इतना कर नहीं पाएंगे। हम लोग पिछले साल लगभग 2.25 लाख की थी हमने, तो महाराज को पूछा हमने इस साल कितना करना चाहिए, महाराज ने 3 लाख घोषणा किया है पुणे के लिए, वापिस अपने प्रवचन में भी महाराज बताएंगे। तो मैं महाराज से विनती करता हूँ कि हम सब भक्तों को शक्तिपात करे, शक्ति प्रदान करे, प्रेरणा दे इनके प्रवचन के द्वारा, ताकि इनसे प्रेरणा लेकर हम लोग पुणे के लाखों लाखों लोग जहाँ पुणे में 40-50 लाख लोग हैं, हम इन किताबों को हम पहुँच पाए उन लोगों तक। पिछले साल में तो महाराज जी जनवरी में आकर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इस साल महाराज जी मैराथन के शुभारंभ में आए हैं, पहले में भी एक पुश देंगे बाद में भी प्राइज देंगे, दोनों दो टाइम आने वाले हैं महाराज जी। अभी अगर हम लोग अच्छा वितरण करेंगे तो जनवरी में महाराज वापस लौट आएंगे, अगर हम 3 लाख पहुंच नहीं पाएंगे तो महाराज नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग बड़े मात्रा में आए हो आज, आइए हम महाराज को स्वागत करते हैं श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में। हरी बोल। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।
आपके राधे श्याम प्रभु बड़े दयालु हैं और वो अच्छा उदाहरण भी देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं आप सबको. आपको सुनाई दे रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञातिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाक्य चक्षुर्मीलितेन श्री चैतन्य मनोविष्टम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निधान. हरे हरे कृष्ण. आप में से कितने भक्त कल शाम के प्रोग्राम में थे और कितने भक्त आज सुबह के प्रोग्राम में थे? इसलिए पूछा कि जो कल शाम को थे और आज सुबह थे उन्होंने सुना होगा प्रचार की महिमा. तो हम आप लोग कौन से देश के वासी हो? सब भारतीय हो? सब पक्का पासपोर्ट है? अच्छा, तो हम आपको सुनाना चाहते हैं महाप्रभु का आदेश हम भक्तों के लिए. सुनना चाहते हो?
हरे कृष्णा. सर्वप्रथम सूचना है कृपा करके आगे आइए. दूसरी बात, अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे रखिए क्योंकि सुबह बहुत डिस्टरबेंस हुआ. और बच्चों को शांत रखिए, जो भी माताएं बच्चों को लेकर हॉल में आई है, नहीं तो आप बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं. श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 41. भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार.
अनुवाद
कृपया दोहराइए. जिसने भारत भूमि या भारत वर्ष में मनुष्य जन्म लिया है उसने अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में व्यक्त हुई है. यद्यपि वे बंगाल में जन्मे थे और बंगालियों का उनके प्रति विशेष कर्तव्य है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बंगालियों को ही नहीं अपितु भारत के सारे निवासियों को संबोधित कर रहे हैं. भारत भूमि में ही वास्तविक मानव सभ्यता विकसित हो सकती है. जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, मानव जीवन विशेष रूप से भगवत साक्षात्कार के लिए है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. जो भी भारत भूमि या भारत वर्ष में जन्म लेता है उसे यह विशेष अवसर प्राप्त है कि वह वैदिक सभ्यता के उपदेश तथा मार्गदर्शन का लाभ उठा सके. वह स्वतः आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों को पा लेता है, क्योंकि 99.99% भारतीय लोग, यहाँ तक कि गांव के सीधे साधे किसान तथा अशिक्षित लोग भी आत्मा के देहांतरण, विगत तथा भावी जीवन एवं ईश्वर में विश्वास करते हैं और स्वाभाविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की पूजा करना चाहते हैं. श्लोक क्रमांक 42. एतावत् जन्म साफल्यम् देहि नाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा अनुवाद, यह हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे।
तो आपने दो श्लोक सुने ध्यान से। पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे अपना उद्धार करना है और दूसरों का उद्धार करवाना है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लेता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके अच्छे संस्कार हैं और बचपन से ही हमने राम और कृष्ण के नाम सुने हैं। जो मुसलमान व्यक्ति हैं वो भी जानते हैं राम और कृष्ण को। तो जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उन्हें अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का। आगे ये कहा गया है वही बुद्धि से, धन से, तन से हमें क्या करना चाहिए, वो कार्य जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो। तो ये जो प्रचार की सेवा है इसका उद्देश्य क्या है, सबको भगवान के चरणों में लेकर आना। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने एक महान प्रसिद्ध मायावादी प्रचारक सर्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया था। वो मायावादी विचार के थे, उन्हें आकर्षित किया शुद्ध भक्ति के प्रति और उनकी इजाजत लेकर महाप्रभु आगे बढ़े। कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जहाँ भी महाप्रभु गए वहाँ हजारों लोग आते थे महाप्रभु को देखने के लिए। उनके सुनते ही, देखते ही वो भी हरिनाम जाना शुरू कर लेते थे। और जब वो व्यक्ति लौटते थे अपने स्थानों में तो उनसे हरिनाम सुनकर वो भी हरिनाम के भक्त बन जाते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने लगभग पूरी दक्षिण यात्रा की प्रजा को क्या किया, वैष्णव बना दिया। वो भगवान थे और महाप्रभु यात्रा कर रहे थे एक शहर से दूसरे शहर। एक भक्त था जिनका नाम था कुर्मा। कुर्मा थे गृहस्थ आश्रम में और जब महाप्रभु उनके घर में आए तो बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए। और कुर्मा ने कहा, क्या मेरा सौभाग्य है कि परम भगवान स्वयं आए हैं कहाँ, मेरे घर में। फिर आगे जाकर कुर्मा ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर में रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं यात्रा करूँ। और महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, नहीं, मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, घर में रहो और इन कार्यों को करो। क्या? एक चैंट हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो और दूसरों को हरिनाम की महिमा का ज्ञान दो, भगवद गीता पढ़ो और गीता के संदेश का प्रचार करो। और महाप्रभु ने कहा, अगर तुम ये दो कार्य करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आदेश हम सबके लिए है। तो महाप्रभु जब यात्रा कर रहे थे दक्षिण भारत की तो हर व्यक्ति जिसने कहा मैं आपके साथ चलना चाहता हूं उन्हें यही आदेश दिया, क्या क्या आदेश, चैंट हरे कृष्णा, वही नाम का प्रचार करो, गीता पढ़ो और गीता का प्रचार करो। तो इस प्रकार महाप्रभु ने लगभग पूरी प्रजा को दक्षिण भारत में वैष्णव बना दिया था। आज अगर आप दक्षिण भारत में जाओ तो क्या देखते हो, कोने कोने में मस्जिद, कोने कोने में चर्च। आप इसकी पुणे में बैठे हुए अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जाकर देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हम सबको ये संदेश दिया है कि जिस आश्रम में आप हो रह सकते हो, हरिनाम को अपनाओ, गीता को अपनाओ और हरिनाम की महिमा का प्रचार करो। और गीता का संदेश, हरिनाम की महिमा का प्रचार कैसे होता है, ग्रंथों के माध्यम से। जब आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हो तो शुरू से अंत तक ये देखते हो किस विषय पर बल है, हरिनाम। तो एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी और उसका पूरा शरीर फुंसियों से भरा हुआ था और एक फुंसी में फंस और उनका शरीर से इतनी बदबू आती थी, इस सब उनसे दूर भाग जाते थे। अगर वो सड़क के बाएं तरफ चल रहे हैं तो सब दाहिने तरफ हो जाते थे, इतनी बदबू आती थी उनके शरीर से। तो वासुदेव विप्र, उन्हें पता था चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयान्य, यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उन्हें सूचना मिली, चैतन्य महाप्रभु आए हैं आपके शहर में और वो निवास कर रहे हैं कुर्मा ब्राह्मण के घर में। तो वासुदेव विप्र तेजी से भागा, कुर्मा ब्राह्मण के घर में पहुंचा। तो जब वहां पहुंचा उन्होंने पूछा कहाँ है महाप्रभु, ये कहा गया महाप्रभु तो चल बैठे यहां से। तो वासुदेव विप्र लगभग बेहोश हो गया, तरस रहा था महाप्रभु की संगत के लिए। जब उसे पता लगा महाप्रभु चल पड़े हैं तो बहुत उदास हो गया, शोक में हो गया, वो लगभग बेहोश हो गया। हम जीव अंदाजा नहीं लगा सकते जो भाव गोपियों का था भगवान के प्रति, या जो भाव वासुदेव विप्र का था महाप्रभु के प्रति। गोपियों का तो बड़ा भारी भाव था। एक समय भगवान जब द्वारका में थे, उन्होंने उद्धव से कहा मुझे सिर दर्द हो रही है, मुझे मेरे भक्त के चरणों की धूल चाहिए इस सिर दर्द को दूर करने के लिए। जैसे कि आप टाइगर बाम लगाते हो सिर दर्द होता, तो भगवान ने कहा मेरे भक्त के चरणों की धूल चाहिए। उद्धव गए सबसे पहले सत्य बामा के पास, अनेक पतियों के पास गए, ज्ञानियों के पास गए, योगी के पास गए, भगवान को सिर दर्द हो रही है, भगवान ने कहा कि जल्दी से जल्दी मेरे भक्तों के चरणों की धूल लाओ, और आप धूल दोगे। सबने इनकार कर दिया, सबने कहा इसका तो शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा प्रभाव होगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा, हम तैयार नहीं है। नारद मुनि वापस लौटे भगवान के पास, और कहा, मैंने तो सोचा था लाखों लोग आगे उड़ेंगे अपने चरणों की धूल देने के लिए, और अफसोस की बात है कि जहां भी मैं गया सब ने इनकार कर दिया। फिर भगवान ने पूछा, तुम गोपियों के पास गए कि नहीं? अरे सब जगह गया पर गोपियों के पास नहीं गया। फिर उद्धव जी पहुंचे, उद्धव पहुंचे गोपियों के पास वृंदावन में, और उन्होंने देखा कि गोपियां जो बैठी हुई थी उस वैसे बैठी हुई थी जिसके सामने द्वारका हो, द्वारका के डायरेक्शन में थे। तो जब नारद उद्धव ने कहा, वो जब उद्धव उद्धव पहुंचा, गोपियों ने कहा, अभी क्या संदेश लाए हो? क्योंकि उन्हें संदेश मिलता रहता था उद्धव के द्वारा। उद्धव ने कहा, भगवान को सिर दर्द हो रही है, उन्हें भक्त अपने भक्त के चरणों की धूल चाहिए, आप लोग धूल दोगे? और गोपियों ने क्या कहा, धूल जो चाहिए ले लो, हमारे मन में केवल एक ही भाव है, भगवान की खुशी। उन्होंने खुशी से चरण की धूल दे दी। उद्धव ने कहा, जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? उन्होंने कहा कि हमें नरक में भी जाना पड़े, हम जाने को क्या है। गोपियों का बड़ा ऊंचा भाव था। इसी प्रकार अर्जुन का, इसी प्रकार वासुदेव विप्र का चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो महाप्रभु तो परम भगवान है, ईश्वर सर्वभूतानाम देश रजुना। महाप्रभु समझ गए कि वासुदेव विप्र उदास है, शोक में है, क्योंकि उसे मेरा दर्शन नहीं मिला। तो महाप्रभु वापस आ गए और वासुदेव विप्र को देखते ही उन्हें गले लगाया, और जब उन्हें गले लगाया तो जो ये बड़ी गहरी बीमारी थी कोढ़ की, वो तुरंत समाप्त हो गई, और ये बदसूरत बदबू से भरा हुआ भक्त खूबसूरत योग बन गया और खुशबू आने लगी उसके शरीर से। तो फिर वासुदेव विप्र ने भागवतम के 10 स्कंद के उन स्तुतियों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। सुदामा ब्राह्मण की भी की कथा अब भागवतम के 10 स्कंद में पढ़ते हो। ये सुदामा दास था, ब्राह्मण था, पर वो गरीब ब्राह्मण था। अक्सर ब्राह्मण गरीब होते हैं, वो फिर ब्राह्मण दीक्षा नहीं चाहिए, हम गरीब नहीं बनना चाहते, हमें तो अमीर बनने का साधन दो। तो सुदामा ब्राह्मण निवास कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, दोनों का बड़ा सादा जीवन था, एक छोटा कमरा था रहने के लिए। सुदामा ब्राह्मण के पास एक या दो धोतियां थी, उसकी पत्नी के पास एक या दो साड़ी। सुदामा ब्राह्मण तो संतुष्ट था, ब्राह्मण जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, सुख में और दुख में। तो सुदामा ब्राह्मण संतुष्ट था, ये नहीं कहा उसने भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया। उसकी पत्नी भी संतुष्ट थी, पर उसकी पत्नी जानती थी कि मेरे पति का एक बहुत धनी मित्र है, तो कहाँ निवास करता है? द्वारका में। द्वारका में आप जानते हो एक समय 20 लाख महल थे। तो उसकी पत्नी जानती थी मेरे पति का एक धनी दो मित्र है जो द्वारका का राजा है, तो कई बार पति ने पति से कहा, आप जाकर अपने मित्रों को क्यों नहीं मिलते है द्वारका में? शेर वो धनी मित्र हमका, हम गरीबों का उद्धार कर दे। परशुराम ब्राह्मण जाना चाहता था इस दृष्टि से नहीं कि उसे धन मिलेगा, इस दृष्टि से कि वो अपने बचपन के मित्र को मिलेगा। आगे दोनों बचपन में मित्र थे, एक साथ खेलते थे, दोनों ने शिक्षा ग्रहण की एक गुरु से जिनका नाम था बड़े मुनि। वो दोनों ने कई लीलाएं एक साथ की थी। जब उसकी पत्नी ने बार बार कहा आप जाओ अपने धनी मित्रों को मिलो, वैसे रामदास ने कहा पत्नी में दिन रात कहती उसे मिलो, चलो जाता हूँ उसे मिलने के लिए। और घर छोड़ने से पहले सिद्धाम ब्राह्मण ने पूछा पत्नी से, तो मुझे कुछ दोगे जो कि मैं भेंट के रूप में मेरे मित्र को दे सकूं? कहा जाता है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उसकी वो इतने गरीब थे कि उसकी पत्नी ने ढूंढा घर के हर कोने में कुछ भेंट मुझे मिल जाए जो मैं अपने पति को दे सकूं उनके मित्र के लिए। तो पूरे घर में कुछ भी नहीं था। फिर वो पत्नी पड़ोसियों के घरों में गई और कहा कि मेरा पति एक मेरे मित्र को मिलने जा रहा है, कुछ मैं आपसे मांग सकती हूँ? तो थोड़ा चार मुट्ठी के चावल उन्होंने इकट्ठा कर लिया और उसे कपड़े में लपेट कर अपने पति को दे दिया। सुदामा ब्राह्मण चले कहाँ? द्वारका की ओर। जब वो द्वारका में पहुंचे सीधा चले गए उस महल में जहाँ भगवान रुक्मिणी के साथ निवास कर रहे थे। नारद मुनि ने सुना था कि भगवान द्वारका में रह रहे हैं, उन्होंने 16,108 पतियों से विवाह किया है और हर पत्नी के साथ अलग अलग महल में निवास कर रहे हैं। और नारद मुनि ने कहा देखने दो भगवान की लीला को। तो नारद मुनि अलग अलग महलों में गए, उन्होंने देखा एक महल में भगवान की आरती मंत्र कर रहे हैं, दूसरे महल में खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो सुदामा ब्राह्मण सीधा उस महल में पहुंच गए जहाँ भगवान रुक्मिणी के साथ थे। भगवान बैठे थे बिस्तरे में, उन्होंने दूर से देखा सुदामा आ रहा है तो उठकर रुक्मिणी को छोड़कर गए अपने मित्र को मिलने के लिए। उन्हें गले लगाकर बिठा दिया अपने बिस्तर में और उनके चरण धोए। भगवान ने ये शिक्षा दी किस प्रकार हमें संतों का स्वागत करना चाहिए। भगवान ने उनके चरण धोए और जो महल के दूसरे सेवक थे वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें सोचा कौन है ये व्यक्ति, गंदी धोती पहना हुआ है, दाढ़ी उगी हुई है और गंदा फटी हुई धोती है वो भी गंदी, और भगवान ने उसे गले लगाया, उसके चरण धोए, उन्हें बिस्तर में बिठा दिया। जरूर ये कोई खास व्यक्ति होगा। तो सुदामा ब्राह्मण और भगवान बैठे, उन्होंने चर्चा की बचपन की लीलाओं का। आप कभी अपने बच्चों स्कूल के मित्रों को मिलते हो तो बचपन की कथा नहीं चर्चा करते हो? याद है हम उस क्लास में थे, वो टीचर कैसे हमें मारता था, ये दूसरा टीचर हमें क्या कर रहा है, आप भी वही करते हो ना, जब बच्चों के बचपन के मित्रों को मिलो। सुदामा और भगवान ने वही किया, कहा कि किस प्रकार गुरु ने एक दफा उन्हें भेजा जंगल में, जहां वो फंस गए बुरे मौसम के कारण। तो इस प्रकार अनेक विषयों की चर्चा करके सुदामा ब्राह्मण चले अपने घर की ओर। रास्ते में वो सोच रहे थे, मैं अपने मित्र को मिला तो सही, पर मैंने इस मित्र से कुछ मांगा ही नहीं। उसकी पत्नी तो कहती थी, जाओ जाओ जाओ, मिलो तुम्हारे धनी देश को, मित्र को, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, तो मैं वापस जा रहा हूँ। रास्ते में यही सोच रहे थे। तो जब सुदामा ब्राह्मण अपने महल में पहुंचे, अपने घर में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनकी सादी कुटिया एक महल बन गई है, और उस महल में अनेक द्वारपाल है, और उनकी पत्नी जो फटी साड़ी पहनती थी, रेशम की साड़ी हुई है, सजी हुई है, गहने की चूड़ियां उनके हाथों में है। तो सुदामा ब्राह्मण समझ गया, तो उन्होंने स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान किया और कहा, ये सब संभव हुआ है किसकी कृपा से? मेरे गणेश मित्र की कृपा से। सुदामा ब्राह्मण तो रास्ते में सोच रहे थे, मैं इतनी दूर से गया मेरे मित्र को मिलने में द्वारका में, पर कुछ मांगे बिगड़ में चला आया। पर भगवान को मांगने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से रंजना, मैं हरि के हृदय में विराजमान हूँ। सर्व से चार हृति सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपहारम चा, मेरे द्वारा स्मरण की शक्ति आती है, मेरे द्वारा अपोहार भूलने की शक्ति आती है। जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, इसलिए भगवान ने आपको प्रेरणा दी और आप जुड़े भक्ति के साथ। पर इस मंदिर के बाहर लाखों लोग हैं पूना में, तो नहीं जुड़े हैं इस संस्था के साथ, जो भगवान को भूलना चाहते हैं। तो इतनी अच्छी सुविधा है, बड़े आसानी से भूल सकते हो। आजकल आपने देखा होगा, सब लोग स्मार्टफोन के साथ जुड़े हुए हैं, पुणे में भी। हाँ अच्छा, तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल कोई आजकल मित्रता का भाव समाज में और भी कम हो रहा है, सब व्यस्त हैं स्मार्टफोन के साथ। कोई गेम खेल रहा है, कोई एक आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, ये भी कर सकते हो, सिनेमा भी देख सकते हो। कई बार ट्रेन में जब मैं यात्रा करता हूँ या घूमता हूँ आगे पीछे, मैं देखता हूँ लगभग 50% लोग अपने स्मार्टफोन के द्वारा सिनेमा देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, व्यस्त हैं। तो आजकल कलयुग में इसका बड़ा तेज प्रभाव है, और जो भागते हैं वो अपने स्मार्टफोन्स में भगवान की तस्वीरों को, प्रभुपाद की तस्वीरों को, प्रभुपाद के ग्रंथों को बिठाते हैं। तो सुदामा ब्राह्मण ने, वासुदेव विप्र ने उसी स्तुति का उच्चारण किया जिसका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था जब उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया क्या बन गई है, महल। तो वासुदेव विप्रा बदसूरत था, बदबू आती थी, अब महाप्रभु जी की कृपा से क्या बन गया, सुंदर युवक। तो उसके मन में एक भय था। क्या था भय, किसी को नहीं मालूम, ये भय था, अब मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, मेरे में घमंड नहीं आ जाए। शास्त्र में कहा गया है, अगर आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्ञानी हो और धनी हो तो आपके मन में घमंड आ जाता है, नहीं हम इतने बड़े आदमी हैं, हम क्यों हरे कृष्ण वालों के पास जाए, हमारे धन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। तो उनके मन में यह घमंड था। पहले तो कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, अब मेरे मित्र की कृपा के कारण इतना खूबसूरत बन गया हूँ, मेरे में गौरव नहीं आ जाए। तो महाप्रभु ने कहा, तुम हरि नाम का प्रचार करो, हरि नाम का उच्चारण करो, वो हरि नाम की महिमा का प्रचार, गीता का अध्ययन और गीता की महिमा का प्रचार। और अगर तुम ये दो कार्य करोगे तुम सदा मेरे साथ रहोगे और तुम्हारे में कभी भी घमंड नहीं आएगा, आप हमेशा विनम्र भाव में रहोगे। ये था उनका संदेश। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं, जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस संस्था के भक्तों का उद्धार हो रहा है। सच है। आप कहोगे हम तो शुरू से ही शुद्ध जीवन बिता रहे थे, हाँ ब्राह्मण ज्ञान में थे, हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञान अंजना शौक्य शक्षर मिलित नहीं है ना तस्मा श्री गुरु नमः। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता में, पर हम साधु संत की संगत में आकर हमारी अज्ञानता दूर हो गया। आप सब अगर सच्चाई से खोजो तो देखोगे हम सब पैदा हुए थे अज्ञानता में, सच बात है। और आप किसी प्रकार से साधु के संगत में आए, भक्ति का बीज प्राप्त हुआ और भक्ति का भाव बढ़ा। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, ब्रह्मांड ब्रह्मी देखो नो भगवान जी गुरु कृष्ण के पाए, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति असली धन है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ज्ञान तो आपको प्राप्त हो गया, पर ये बीज उगना चाहिए। आप बगीचे में बीज बोते हो तो उसे उगाने के लिए क्या करते हो, हाँ पानी। तो इसकी तुलना की गई है श्रवणम और कीर्तनम के साथ। अगर भक्ति का बीज उड़े उगेगा कैसे, अगर आप क्या करोगे श्रवण कीर्तनम, अगर पानी नहीं पिलाओगे तो बीज नहीं उगेगा, पिलाओगे तो उगेगा। और आगे उन्होंने कहा कि ये सावधान रहने के लिए कि गलत व्यक्ति आकर कुछ फूल वगैरह नहीं खा ले, तोड़ दे, हमें एक फेंसिंग बनाना चाहिए, मतलब दीवार बनानी चाहिए चारों तरफ, और दीवार होगी तो गलत आदमी नहीं आ सकेगा। और ये जो भक्ति का बीज है बगीचा नष्ट हो सकता है अगर कोई वैष्णव अपराध करे। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बड़े गहराई के साथ शिक्षा दी, हमने तो केवल संक्षेप में वर्णन किया। तो प्रभुपाद कहते हैं इसको कि भक्तों को क्या करना चाहिए, इस संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो भगवान ने वासुदेव विप्र को क्या कहा, तुम हे नाम लो प्रचार करो, गीता पढ़ो और प्रचार करो। तो ये प्रचार की सेवा जिसके विषय में आप सुन रहे हो, इस सेवा का गुणगान हमारे शास्त्रों में है। ठाकुर भक्ति विनोद मान आचार्य थे, नामो भक्ति विनोद आया सचिनंद नाम ने गौर शक्ति स्वरूप आया पुण्य का प्राय थे, महाप्रभु की दिव्य शक्ति माने जाते हैं। उन्होंने 1896 जब श्री प्रभुपाद प्रकट हुए थे पृथ्वी पर जिस साल, उस साल उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं के उपदेश शिक्षा पर, और वो ग्रंथ उन्होंने विदेश की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी US कांग्रेस की वहाँ भेजा। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े विजनरी थे, उन्होंने देखा कि महाप्रभु जी की शिक्षा सहजियों के हाथ में आ गई है, तो उन्होंने प्रयास करके महाप्रभु की शिक्षा को फिर से पवित्र रूप में स्थापित किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर पहले महानाचार्य थे जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। आपके पहले अंतर्राष्ट्रीय बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, और फिर उन्होंने यही आदेश दिया भक्ति सिद्धांता जी को, और भक्ति सिद्धांता जी ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने 3 प्रिंटिंग प्रेस खोले थे अलग अलग शहरों में, और जब उनके शिष्य 1 या 2 अखबार बांटकर वापस घर आते थे तो बहुत ही खुश हो जाते थे। और 1922 में जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जी को मिले, प्रभुपाद जी के मित्र थे जो कि भक्ति सिद्धांत जी से बड़े प्रभावित थे। बचपन में भी प्रभुपाद के पिता संतों को निमंत्रण देते थे, और इस कारण प्रभुपाद जी का काफी दर्शन प्राप्त हुआ था संतों का, और प्रभुपाद किसी से भी प्रभावित नहीं थे। बंद क्यों करो? यू वांट टू फैन ऑन एसी? आई हैव नो प्रॉब्लम फैन ऑन एसी, आई हैव नो प्रॉब्लम यू नो, आई सी लॉट ऑफ पीपल बट फर्स्ट ट्राई आई गेस। Really, if you all want, I don't want. Okay. So, Bhakti Siddhanta ji ne jo pehli baar mile, pehchan liya ki ye wo yuvak jo ki Mahaprabhu ke sandesh ko pashchim desh mein le ja sakega. Aur 1936 mein Bhakti Siddhanta ji aprakat ho gaye. उनके अप्रकट होने से 2 हफ्ते पहले प्रभुपाद उस समय बॉम्बे में निवास कर रहे थे। प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा अपने गुरु महाराज को। प्रभुपाद ने कहा, आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, मैं आपके लिए कोई ज़्यादा सेवा नहीं कर रहा। ये प्रभुपाद की विनम्रता थी। भक्ति सिद्धांत जी उन्हें वही कहा जो 1922 में, तुम पढ़े लिखे युवक हो, पश्चिम देशों में जाकर कृष्ण भक्ति की स्थापना करो और भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करो। तो और उन्होंने पापा जी को एक दिन एक समय भक्ति सिद्धांत जी ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे, राधा कुंड में प्रभुपाद जी उन्हें मिलने गए, तो वहाँ उन्होंने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा, ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है ये क्या है? क्या है? बेहद मृदंगा। अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो उस धन से ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करना, ये था उनका आदेश। तो प्रभुपाद जी ने इस आदेश को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया उनका सदा यही प्यार था इस आदेश को सफल बनाने के लिए। तो ये इस ग्रंथ की सेवा को बेहद मृदंगा क्यों कहा जाता है, कौन कहेगा? हाँ बोलिए। अब मृदंगा बजाओ आपकी आवाज थोड़ी दूर तक जाएगी, साउंड सिस्टम लगा दोगे तो और दूर तक जाएगी, और सारे विश्व में तो नहीं जाएगी। एक ग्रंथ को आप पूना में बांटते हो तो उसका अध्ययन इंग्लैंड में भी हो सकता है। एक हमारे रशियन भक्त हैं जो पानी के जहाज में काम करते थे, तो जब उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा तो एक भक्त उन्हें मिला जिसने एक किताब बेची, तो किताब उन्होंने ले ली। जब जहाज ऑस्ट्रेलिया से लंदन तक पहुंचा, जाने लगा, तो रास्ते में वो किताब पढ़ी। जब वो लंदन में पहुंचे तो स्कॉल के मंदिर में गए जहाँ उन्होंने और ग्रंथों को प्राप्त किया, और फिर जब लंदन से मॉस्को के लिए निकले तो इन ग्रंथों को पढ़ा और निर्णय किया अब मैंने भगवान कृष्ण भक्ति में जुड़ना है। तो ये ग्रंथ मिला था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। उसका प्रभाव कहाँ निर्णय हुआ? राष्ट्र में। तो ये है बृहद मृदंगा की सेवा। वो हर साल हमारे भक्त सेवा में जुड़ते हैं केवल एक ही भाव के साथ, लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, जीवन को सुधारेंगे। प्रभुपाद जी के अनेक पत्र हैं, आप में से कितने भक्तों ने प्रभुपाद जी के पत्र पढ़े हैं जिनमें ग्रंथ वितरण की सेवा की महिमा का गुणगान है? अनेक पत्र हैं, पर अगर आप प्रभुपाद के पत्रों में पढ़ो देखोगे बार बार प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, पढ़ो, रीड, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक। केवल एक भाव से, क्योंकि इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी। भगवान की वाणी में कोई दोष नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, और इन ग्रंथों के माध्यम से अज्ञानता दूर हो सकती है। श्रेयस और प्रयास, हम वो कार्य करना चाहते हैं जो हमें तुरंत आनंद दे, और या वो कार्य करें जो लंबे सफर में आनंद दे। तो ग्रंथों के माध्यम से लोगों की अज्ञानता दूर होती है, और इसलिए प्रभुपाद जी ने इस सेवा पर बल दिया। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे मेरे गुरु का आदेश था ग्रंथ वितरण की सेवा करने के लिए। तो जब प्रभुपाद अमेरिका भी पहुंचे, जब उन्होंने अमेरिकन भक्तों को कहा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, तो अमेरिकन भक्त शिष्य जो थे वो चिंता में आ गए, गुरु जी रोज हमें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, पर किसको अभ्यास ही नहीं था कि अमेरिका जैसे देश में कैसे आप एक विदेशी धर्म का प्रचार करोगे। पर भक्त यही सोच रहे थे, और आस्ते आस्ते उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया और वो बढ़ते गया। तो ये जो ग्रंथों की सेवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। भगवान गीता में क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? प्रचार करता है, उसे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो आप सबसे निवेदन है आप हर साल इस सेवा में जुड़ते हो। पिछले साल आप ऐसे कौन कौन जुड़े थे इस सेवा में? आप में कितने भक्त हो जिन्होंने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया? दो तीन बार, बाकी समय किया है सब इसकी महिमा से परिचित हो। प्रभुपाद ने कहा अगर कोई एक श्लोक पढ़ लेगा और उस एक श्लोक को अपना लेगा तो उसका जीवन क्या सफल हो सकता है। कई बार हमें लज्जा आती है, हम जाएंगे कहेंगे लोगों से किताब लो, भिखारी का काम हम नहीं कर सकते। भगवान में तो भिखारी बनना कोई छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। भगवान के लिए भीख मांगना ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। तो आप सब जुड़िए इस सेवा में। पिछले साल हम भक्तों ने मिलकर लगभग 2.5 लाख गीता बांटी थी, वह आप एक चीज देख सकते हो कि हिंदुस्तान में खास करके भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। कई बार भक्त सोचते हैं अगर हम 1 लाख गीता बांटेंगे तो अगले महीने 1 लाख नए भक्त आ जाने चाहिए। ये भक्त कई बार सोचते हैं, जैसे कुछ समय पहले हमने एक मीटिंग की थी और भक्तों के साथ, तो एक भक्त ने कहा अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा गीता बट गई हैं सारे विश्व में अनेक भाषा में, तो 50 करोड़ भक्त क्यों नहीं बने। ये कहना कि एक ग्रंथ के द्वारा कितने भक्त बनेंगे ये कठिन है। पर इतना आप देख सकते हो आपके पूना शहर में, खास करके जो जुड़े हुए हैं प्राचीन समय से, शुरू में आपने देखा कि कम भक्त हैं, अब दिन ब दिन आप देखते हो ज़्यादा मंदिर ज़्यादा भक्त। तो ये सब किस कार्य का परिणाम है? ये आपके प्रचार के परिणाम का, और प्रचार में सर्वश्रेष्ठ प्रचार है गीता का वितरण, ग्रंथों का वितरण। तो हमें इस सेवा में बड़े उत्साहित होकर जुड़ना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यत तत्तर कर्म प्रवर्धन संग त्यागे सतव्रते सदवीर भक्ति प्रसिद्धि। आपकी भक्ति बढ़ती है अगर आप उत्साह के साथ सेवा करते हो। बहुत एक समाज में हम देखते हैं हम बड़े उत्साहित रहते हैं बहुत एक सुख प्राप्त करने के लिए, बहुत एक सुविधा प्राप्त करने के लिए, हमें भगवान की सेवा के लिए भी उत्साहित होना चाहिए। अगर किसका संदेश है भगवान का? एक ब्राह्मण था, एक गरीब, जिसकी इच्छा थी कि मैं सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की सेवा में जुड़ूं। तो उसने उस गांव में खोजा कौन है मेरे गांव का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। उसने देखा कि एक बनिया है, दुकानदार है, सब आकर उसको सलाम करते हैं। उसने सोचा ये होगा सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। तो उसने उसे पूछा मैं तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ? कर सकते हो। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति खजांची कैदा आता है वो इस दुकानदार से कर लेने के लिए। तो उसने पूछा, उसने सोचा लगता है ये दुकान ये जो कर लेने आता है वो इस दुकानदार से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा कर लो। उसकी सेवा में जुड़ गए। फिर उसने देखा कि ये खजांची भी किसी और को प्रणाम करता है, हमारा सलाम करता है। और फिर उसने देखा वो सलाम किसको कर रहा था? राजा को, क्योंकि राजा का खजांची था। तो वो समझ गया ये राजा सबसे ऊंचा व्यक्ति है, मुझे उसकी सेवा करने दो। और फिर उसने देखा राजा भी किसी के सामने झुकता है, कौन था वो? साधु, राजा जी गुरु साधु के सामने झुकता है। वो समझ गया कि गुरु और साधु भी राजा से ऊंचे स्तर पर है। फिर उसने देखा कि ये साधु भी किसके सामने झुकता है, वो कौन थे? सबसे भगवान। तो हम सब उनकी सेवा में जुड़े हैं। आपको अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए। भव नाम जन्म न मानते ज्ञान महाम पदते, बहुत से जन्मों के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ये मौका मिलता है। आप सबको मौका मिला है सेवा करने का, तो आप सब उत्साह से कीजिए, और उत्साह से करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण है, आपने आज के श्लोक में सुना, जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे क्या करना चाहिए? हाँ, अपना उद्धार। तो अब अपना उद्धार कैसे करोगे? कैसे? हाँ, हरि नाम करेंगे ना, इसे अपना अच्छा आचार रखोगे। वो अच्छा आचार रखोगे तो प्रचार की प्रेरणा भी बढ़ते जाएगी। पर आचार अगर कमजोर है तो फिर उत्साह से भी काम नहीं चलेगा। तो आचार भी रखो और प्रचार भी रखो, अपना उद्धार करो और दूसरे का उद्धार। तो सब तैयार हो? पक्का? मैराथन कब से शुरू करना चाहिए? हो गया। हाय कृष्णा।
हरे
कोई
हरे कृष्ण
कोई प्रश्न है इस विषय पर? नो क्वेश्चन?
सब जुड़े हैं,
सब सब जुड़ोगे इस सेवा में?
कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ
तो आप लोग कैसे जुड़ोगे? अपने काउंसलर्स के पास जाओगे? कैसे जाओगे?
कृपा करके बैठे रहे, अभी और भी बहुत कुछ आना है। कुछ समय में हम यहाँ पर एक ऐप लॉन्च करेंगे, उसके बाद एक वीडियो दिखाया जाएगा और फिर
प्रसाद कब होएगा? सीधी बात करो। प्रसाद अंतिम होगा तो लोग बैठेंगे, या प्रसाद हो चुका है तो
सबके अंत में प्रसाद होगा और सभी के लिए होगा।
हरे कृष्ण महाराज, when we go for book distribution, Bhagavad Gita especially, many people say that we have already bought it last time, somebody has gifted.
Yeah, and this may be true. We may be approaching people who have Bhagavad Gita because we've distributed them many times.
Yes, Maharaj.
You can tell them, you can give the gift of Gita to your friend, relative. And if you have no one to gift it to, I can do it on your behalf.
Yes, Maharaj.
I can go to a library and place it on your behalf.
So we can take donation like that. If we show them some other books, is it okay?
Yeah, why not?
SSR, JSD, this we can show.
Ab dusri koi aur grant bhi kar sakte ho.
Thank you, Maharaj. Hare Krishna.
Hamare ek bhakt hain Jodhpur mein, जो जब मोटर चलाते हैं तो अपने साथ गीता रखते हैं, तो रेड लाइट में जब गाड़ियां रुकती हैं तो अपने मोटर में बैठे बैठे गीता पड़ोसी को देते हैं। वो कहते हैं कि रोज मैं 5-10 गीता बांट देता हूँ। तो ये नया टेक्निक है, मोटर में बैठ रहा हूँ और दूसरी मोटर वाले को
तो श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के उपलक्ष्य में एक ऐप का यहाँ पर लॉन्चिंग हो रहा है। श्रीमान पावन निताय प्रभु इस ऐप को तैयार किए हैं, वो महाराज को इनॉग्रेट करने के लिए डिवाइस प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी पावनिता प्रभु देंगे।
हरे कृष्णा, हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी के हाथों से ये ऐप आज लॉन्च हुआ है, और आप जैसा प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे कि ये ऐप ऐसा ऐप है जो हम भक्तों को एक तरीके का सुविधा प्रदान करेगा अपने बड़े नंबर्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें बहुत ही सारांश में ये बताना चाहूंगा कि आई बिलीव वो प्रेजेंटेशन आप स्लाइड चेंज करते रहिए। तो इस ऐप के माध्यम से सबसे पहली बात यह है कि इस ऐप को हम किसी भी स्थान पर किसी भी कंप्यूटर डिवाइस या स्मार्टफोन या लैपटॉप या कोई भी अपने घर या ऑफिस में यूज कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम अपना समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन या भक्तों को प्रचार के सहायता हो इसमें समय ज्यादा लगा के और ऑफिस में और अपने जीवदी ऑफिस में ज्यादा समय ना देते हुए इस ऐप के माध्यम से हम आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमको बुक्स चाहिए, सपोज किसी को 108 बुक भगवद गीता चाहिए या 50 कृष्णा बुक चाहिए, तो आप ऐप के थ्रू ही इसका ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे जो जीवदी ऑफिस में पहुंच जाएगा, और वो आपके सुविधा के अनुसार, सपोज आप बोलते हैं कि आपको शनिवार की शाम को 7 बजे तक ये पुस्तकें चाहिए, तो वो उतना निकाल के रखेंगे और आप जब जाएंगे तो आपको केवल कुछ ही मिनटों में आप वो पुस्तकें ले सकेंगे ऑफिस से। उसके बाद आपका पूरा समय डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, और जब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बुक्स और जब चालान सेटलमेंट का समय आता है तो उसके समय पे भी आप, अगर आपके पास सुविधा है तो आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू चालान सेटलमेंट कर पाएंगे। तो इससे आपको जीवदे ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, या उनके जो व्यस्त हैं वहां पे भी जो डिवोटीज उनका भी समय ज्यादा नहीं जाएगा, तो आपको पूरी सुविधा इससे मिलेगी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस मंदिर को, जैसे राजेश हम लोग बता रहे थे कि हमारा टारगेट बहुत डिफिकल्ट है और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है दिल्ली के कंपेयर करें, लेकिन क्योंकि मंदिर खुले हुए अभी बहुत समय हो चुके हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा भी है, जिससे फॉर एग्जांपल हमारे जो डोनर्स हैं जो हम लोग इतने सालों से कल्टीवेट करते आ रहे हैं, तो हर भक्त जो कलेक्टर थे उनको अपना डोनर डेटा दिखेगा, तो आप डोनर्स को भी आप कल्टीवेट कर पाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स लें। तो इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी सुविधा धीरे धीरे प्रदान होगी, तो अभी हम शुरू करेंगे कुछ लिमिटेड भक्तों से, धीरे धीरे पूरे कांग्रेगेशन के पास ये ऐप पहुंचेगा, उस माध्यम से हम शुड बी एबल टू टारगेट मोर नंबर्स।
आपका मंदिर हाई टेक मंदिर है। तो हाई टेक मंदिर में हाई टेक ऐप है, और ये ऐप आपका काम बहुत ही सरल बना देगा। आप तो लगता है आप लोग शेला गीता कर लोगे, क्योंकि अभी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, केवल आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा।
हरे कृष्णा। तो इस ऐप का नाम ICS ऐप है, और आप इसको अवश्य डाउनलोड करें आपके एंड्रॉइड स्टोर से। अब हम यहां पर एक वीडियो प्रेजेंट करना चाहते हैं, और महाराज से कैसे देखेंगे वीडियो, यू कैन जस्ट कम एंड सेट। अब ये लाइट्स थोड़ा डिम कर दे स्क्रीन की, इस वीडियो के पश्चात यहां पर महाराज श्री के हस्ताक्षर से हम ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने